ഹനാനി, ഉർദു വിഒഎ, വാഷിംഗ്ടൺ.
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال. پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ کے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں مبشر علی زیدی. ہمارے پروڈیوسر ہیں انجم ہیرلڈ گل. دوستو, پاکستانی معاشرے میں کئی مسائل ایسے ہیں جن پر عام طور پر بات نہیں کی جاتی. مسائل حل کرنے کا آغاز بات کرنے ہی سے ممکن ہے. بات نہ کرنے کی وجہ سے مسائل اپنی جگہ موجود رہتے ہیں بلکہ وقت کے ساتھ بڑھتے جاتے ہیں. وہ مسائل جن پر پاکستانی معاشرے میں عموماً بات نہیں کی جاتی, ان میں سے ایک مسئلہ خودکشی یا اقدام خودکشی ہے. عالمی ادارے صحت کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال 800,000 افراد اپنی جان خود لیتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 2012 میں 13,000 افراد نے خودکشی کی. اب اس تعداد میں کچھ کمی آئی ہے, لیکن بالکل درست اعداد و شمار دستیاب نہیں ہیں. ماہرین سمجھتے ہیں کہ ہر روز تقریباً 24 افراد, یعنی ہر گھنٹے میں ایک شخص اپنی جان لے لیتا ہے. کچھ کئی علاقوں میں, مثلاً چترال میں, خواتین کی خودکشی کے کافی زیادہ واقعات پیش آئے ہیں, لیکن مسئلہ وہی ہے کہ لوگ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے, اور بعض اوقات گھر والے کسی کو نہیں بتانا چاہتے کہ ان کے پیارے نے خودکشی کر لی ہے. آج ہم نے اپنے پروگرام کے لیے یہی موضوع چنا ہے. ہم ماہرین سے گفتگو کریں گے, صورتحال معلوم کریں گے, اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کے اسباب کیا ہیں اور کیسے حل کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے ہم ڈاکٹر صدف احمد سے بات کریں گے, جنہوں نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے. سائیکولوجسٹ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. خودکشی کا لفظ سنتے ہی پہلا خیال آتا ہے کہ اپنی جان لینے والا شخص یا جان لینے کو تیار شخص ضرور ذہنی مریض ہوگا. یہ خیال کس حد تک درست ہے؟
مبشر صاحب, آپ نے بہت ہی اچھا ٹاپک جو ہے وہ چوز کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی WHO کو کوٹ کیا کہ کس طریقے سے بڑھتی ہوئی شرح ہے دنیا بھر میں, اور پاکستان میں یہ شرح پچھلے کچھ عرصے میں گھٹی نہیں ہے. میں آپ کی کریکشن کر دوں, بڑھی ہے. اور یہ کہنا بالکل غلط بات ہے کہ خودکشی کرنے والا ایک ذہنی مریض لگے گا, ایسا بالکل نہیں ہے. کچھ وارننگ سائن ضرور ہیں جو وہ دکھا رہا ہوتا ہے, اور میں آپ کو بتاؤں WHO کے ہی مطابق 15 سے 29 سال وہ پیک ایج ہے جہاں پہ خودکشی کی جو بیہیویئر ہے, جسے ہم سوسائڈل بیہیویئر کہتے ہیں, وہ بڑھ جاتا ہے. اچھا, سوسائڈل بیہیویئر میں آپ کو بتاؤں, یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا. اس کا مقصد یہ ہے, بالکل ایسا ہے کہ کوئی کسی بھی وقت جو ہے وہ اس سوچ کو اپنے ذہن میں لا سکتا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہو. چاہے اس میں اس نے آپ کو جو ہے وہ زخمی کرنا ہو, چاہے اس میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہو, چاہے اس میں سگنیفیکینٹ اور جسے کہنا چاہیے بہت ہی زیادہ پرومیننٹلی موڈ چینجز ہوں, نا امیدی کا اظہار کرنا ہو, اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہیں نہ کہیں جو سوسائیڈل بیہیویئر رکھتا ہے وہ دکھا رہا ہوتا ہے. قریب کے لوگوں کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کے رویوں میں کتنے چینجز آئے ہیں, جس میں نا امیدی ایک سب سے بڑی وجہ ہے, جس میں فیئر لیسنس ہونا کہ آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے میں یا اپنے لیے کوئی بھی ایسا فیصلہ لینے میں جو آپ کی زندگی کو نقصان پہنچاتا ہے یا بہت ہی زیادہ خطرناک ہے, اس سے ڈر نہیں لگتا. اچھا, 15 سے 29 سال والے لوگوں کو میں بچے ہی کہوں گی, وہ بچے بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے رسکی بیہیویئر کرتے ہیں. اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہنستے مسکراتے آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے وہ, لیکن وہ چیز جو کہ آپ نے ابھی کہی کہ ہم بات نہیں کرتے جن چیزوں پہ, تو آپ کو لوگوں کے اندر سوسائیڈل ٹینڈنسیز نظر آئیں گی. آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ مینٹلی ال, دیکھیں مینٹل النس جو ہے وہ تو ایک ڈائگنوسز ہے, جو کہ ڈپریسو پیشنٹس بھی آپ کو ملیں گے, آپ کو اسکیزوفرینیا کے بھی پیشنٹس ملیں گے, آپ کو سائیکوسس کے بھی ملیں گے, لیکن نارمل دکھنے والے لوگ جو ہیں ان کے سوسائیڈل بیہیویئر اور سوسائیڈل آئیڈیشن ہو سکتی ہے. سوسائیڈل آئیڈیشن بھی میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ کو ہفتے بھر میں 2 سے 3 بار بھی اس بات کا خیال آ رہا ہے کہ میری زندگی کسی کام کی نہیں ہے, مجھے مر جانا چاہیے, یا مجھے تو اس دنیا میں نہیں ہونا چاہیے تھا, تو یہ سوسائیڈل آئیڈیشن ہے, یعنی کہ آپ اپنی زندگی کا نا امیدی रखते हैं और इस बारे में सोच रहे हैं कि जिंदगी खत्म होनी चाहिए. तो ये वो सुसाइडल आइडिएशन और बिहेवियर हैं जो नॉर्मली किसी को सुसाइड की तरफ ले जाने के लिए, धकेलने के लिए, ये नेगेटिव साइकिल बहुत ही ज्यादा अपना रोल प्ले करता है. और ये किसी में भी उजागर हो सकता है, किसी भी मरहले पे हो सकता है, जिंदगी के बहुत सारे वाकयात से हो सकता
है. तो क्या क्या असबाब हो सकते हैं, जैसे ज़हनी मसाइल, ठीक है हमें पता है, माली परेशानियां हैं, कुछ लोग मोहब्बत में नाकामी पर या इम्तहान में नाकामी पर भी हमने ऐसे वाकयात सुने कि खुदकुशी कर ली, नशे का इस्तेमाल लोग करते हैं, तो ज्यादा तादाद कैसे लोगों की होती है, आपको क्या इस बारे में?
क्लिनिकली अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर जो आपने बात की उनको मैं एक बड़ी अम्ब्रेला या पर्सपेक्टिव में बता सकती हूँ. ट्रॉमा, ट्रॉमा एक सबसे बड़ी वजह है. ट्रॉमा बचपन का भी ट्रॉमा हो सकता है, जिसमें हम बचपन में या जिसे आप यंग एज कहते हैं, हमारे उन बच्चों में एडोलेसेंस यानी कि 17-18 साल की उम्र में भी अगर कोई बच्चे जो कि वर्बल, सेक्सुअल, डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार हुए हैं, वो ट्रॉमा कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाता है. वो दिमाग के उन केमिकल्स को चेंज कर रहा है जो कि पॉजिटिव बिहेवियर्स की तरफ लेके जाते हैं, जो कि बेसिकली पॉजिटिविटी प्रोड्यूस करते हैं. ट्रॉमा में वो चीजें भी आ जाती हैं जो आपने अभी निशानदेही की, डेथ ऑफ लव वंस, कि कोई बहुत करीबी किसी की डेथ हो जाना, कोई ऐसा लॉस हो जाना जो कि रिकवरेबल ना हो, या पेरेंट्स की सेपरेशन या लोगों की अपनी सेपरेशन जिसमें ब्रेकअप्स हैं, जिसमें डिवोर्स है, ये सारी चीजें भी हैं. एक और बड़ी वजह मुबशर साहब जो सामने आई है वो कॉलेज और स्कूल या काम की जगहों पे, वर्क प्लेस पे बुलिंग है
जी.
और बुलिंग एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जब जिन्होंने अपने सुसाइड अटेम्प्ट की और उसके बाद हमने उनके लेटर्स पढ़े या वीडियोस देखे, या जिन्होंने अटेम्प्ट किया वो नॉन सक्सेसफुल रही लेकिन हमने उनसे बात की, उसकी बहुत बड़ी वजह बुलिंग है. बुलिंग बहुत सारी वजूहात से हो सकती है, डिस्क्रिमिनेशन है, एथनिक डिस्क्रिमिनेशन है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और जिसे हम सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं. और ये सबसे बड़ी वजह है सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होना, जो हम नहीं सिखाते सोसाइटी में कि किस तरह से हमें इंक्लूसिव सोसाइटी बनना है फॉर एवरीवन.
अच्छा,
और तीसरी बड़ी वजह वो ये जो आपने कहा माशी है, फेयर ऑफ फेलियर, जो हमने पढ़ाई में पीयर प्रेशर और ये सब चीजें हैं जिनकी वजह से फेयर ऑफ फेलियर डेवलप हो गया.
ठीक है, अच्छा ये हम इसके हल की तरफ भी जाएंगे, लेकिन अभी जैसे आपने कहा कि आदाद शुमार के हम ये सोच रहे हैं कि कम हुए हैं 2012 के बाद, लेकिन आप कह रही हैं ऐसी बात नहीं है, तो ये कैसे आदाद शुमार हमें मिल सकते हैं और क्या वो दुरुस्त होते हैं या सिर्फ अंदाजा ही होते हैं, क्योंकि बहुत से केसेस तो पाकिस्तान में रिपोर्ट भी नहीं होते.
जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है. बहुत सारे केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं होते, लेकिन पिछले 2 सालों में मुबशर साहब क्योंकि ज्यादा बात होने लगी है, लोगों ने काम किया है, तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम भी यहाँ पे एडवांस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से हमने सुसाइड का एक जिसे कहते हैं रजिस्ट्री डेवलप करने की कोशिश की है, जिसमें हम जो है वो हर जगह से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं.
अच्छा.
और हॉस्पिटल्स में जो केसेस आते हैं, जो जिसे आप कहें कि किस तरह से खुदकुशी की है, अटेम्प्ट की है, अटेम्प्ट में कितने सक्सेसफुल केसेस रहे, कितनी डेथ्स हुई, कितना रेशियो मेल का है, फीमेल का है. और इसके अलावा हमने स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ने एक ऐसा भी सर्वे किया है जो सुसाइडल बिहेवियर पे है, यानी कि कितनी बार ये बच्चे सोचते हैं अपने बारे में इस तरह से. इंटरनेशनल कुछ टूल्स हैं जिनको हम स्कोरिंग करते हैं, जिनकी हेल्प से पता चलता है कि इस इंसान के अंदर कितनी टेंडेंसी है कि ये अपने आप को सेल्फ हार्म कर सकता है या आगे जाके ये सुसाइडल बिहेवियर को जो है वो पूरी तरह से उसकी कैद में जा सकता है. तो ये सर्वे हमने किए, इनको हम पब्लिश भी कर रहे हैं और इनकी हम जो है वो रजिस्ट्रीज को पब्लिश करेंगे, जिससे ये पता चल रहा है कि नेशनली जो है किस तरीके से रुझान बढ़ रहा है और किस एज में ज्यादा है और क्या रीजन हो सकते हैं. तो
अच्छा.
कोशिश है कि नेशनली पूरा डेटा इकट्ठा किया जाए और लोगों को एक ही जगह, क्योंकि हर कोई अपने अपने लेवल पे छोटी छोटी रिसर्च कर रहा है लेकिन स्टैटिस्टिक्स तभी सामने आएगी जब सब अपना डेटा पूल करेंगे.
दुरुस्त.
तो ये कोशिश है जो कि हम अभी रिसेंटली पब्लिश करेंगे.
अच्छा, क्या इलाज से खुदकुशी करने वाले को रोका जा सकता है? और एक ज़िमनी सवाल ये कि मैंने इलाज के अलावा जैसे मज़हब या तसव्वुफ या योगा, लोग इस भी पनाह गाहें अपनी तलाश करते हैं, तो क्या उनसे भी कुछ फ़ायदा होता है, उनसे भी ये तादाद घटाई जा सकती है?
थेरेपीज कई तरह की हो सकती हैं. देखें, इलाज जो है वो तो ट्रीटमेंट है. ट्रीटमेंट में आप अगर बात करें तो उस चीज का इलाज हो सकता है जो कि क्लिनिकली वहां मौजूद है. जब मैं क्लिनिकली का वर्ड यूज करती हूँ तो उसमें साइकेट्रिक कंडीशन आ जाती है,
यानी गोली खाने से ठीक नहीं होंगे, ये दूसरा थेरेपी चाहिए.
बिल्कुल जी. और जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो हमें बिहेवियरल चेंज लाने पड़ेंगे. अभी मेरी थोड़ी देर पहले कैनेडियन साइंटिस्ट हमारे ही जो लोग हैं उनसे बात हो रही थी, एंड वो लोग भी यही कह रहे थे कि जब हमारे यहाँ से लोग जा रहे हैं तो उनके अंदर जेनेटिकली अब रवैयों के अंदर कुछ चीजें आ गई हैं. तो मुबशिर साहब, इसको हमने जेनरेशन वाइज चेंज करना पड़ेगा. क्योंकि मैं आपको ये बात बता दूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जेनेटिकली, क्योंकि न्यूरो साइंस से मेरा ताल्लुक है तो मैं कहती हूँ ब्रेन हमारे चेंज हो गए, और वो पॉजिटिव केमिकल्स जो जिनकी तादाद ज्यादा होनी चाहिए थी वो तादाद में कम हो रहे हैं. इसकी बहुत सारी वजूहात हैं. इसकी वजूहात वो नेगेटिव साइकिल, वो प्रेशर्स हैं, वो स्ट्रेस है जो हमारी पहली जेनरेशन पे पड़ा, और उसके बाद जो नेक्स्ट जेनरेशन आई उसके पास ना सिर्फ पैदाइश के बाद से डेवलपमेंटल रेशियो कम था इन केमिकल्स का, बल्कि अब जो डेली स्ट्रेसेस हैं वो भी उन केमिकल्स को मजीद कम कर रहे हैं. ये न्यूट्रिशन से भी हमें उसको जो है वो लेवल अप करना पड़ेगा. हमें हमारी फिजिकल एक्टिविटीज, हमारे बच्चों की पॉजिटिव, जिसमें एक्सरसाइज एक बहुत बड़ी चीज है. आपने योगा की बात की, जी हाँ, योगा से इसका बहुत ताल्लुक है. एक्सरसाइज से इसका बहुत ताल्लुक है. पॉजिटिव टॉक से भी इसका बहुत ताल्लुक है. तो जो लेट्स टॉक वाली कैंपेन है ना, वो बहुत जरूरी है. हमारे यहाँ बातचीत नहीं होती इन बारे में. और मैं जैसे यूनिवर्सिटी में 15 साल से पढ़ा रही हूँ तो मुझे नहीं लगता कि हम इन इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, या हमारे दरवाजे इतने खुले हैं उस्ताद के तौर पे भी या पेरेंट्स के तौर पे भी कि हमसे आके लोग बात करेंगे. तो बात करना बहुत जरूरी है, और इससे चीजें रिवर्स होती हैं. इससे लोग एक फ्रेम ऑफ नेगेटिविटी से निकल के फ्रेम ऑफ पॉजिटिविटी में जा सकते हैं. तो ये चीजें मुमकिन हैं, और इसके लिए हमें काउंसलिंग सेशंस भी करने चाहिए. इसके लिए हमें हेल्पलाइंस भी बहुत जरूरी हैं, जो कि हमारे बच्चे झिझकते हैं, हमारे लोग झिझकते हैं बात करते हुए. तो ये चीजें हो सकती हैं, रिवर्स भी हो सकती हैं.
अच्छा, ये हम कह सकते हैं कि किसी शख्स की खुदकुशी है वो समाज की नाकामी है, मुआशरे की, इससे यानी इसमें मसाइल सामने आते हैं. लेकिन ये मसला चूंकि सिर्फ पाकिस्तान या गरीब मुल्कों का नहीं है, तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी लोग खुदकुशी करते हैं.
जी,
तो कहीं ना कहीं ये कोई समाज का मसला होता है जिसकी वजह से ये वाकयात पेश आते हैं.
सोसाइटी का अपना एक रोल है, और मैं यही कहूंगी कि इसमें लो मिडिल इनकम कंट्रीज में भी खुदकुशी है, लेकिन बहुत जैसे कहना चाहिए खुशहाल माशरों में भी ये चीजें हैं. इसमें नाउमीदी और होपलेसनेस का बहुत बड़ा रोल है, और फुलफिलमेंट जिसे हम कहते हैं, हाँ, सोसाइटी का इसमें बहुत बड़ा रोल इसलिए भी है कि आप अगर करियर डेवलपमेंट की बात करें, अगर आप वर्क प्लेस स्ट्रेस की बात करें, अगर आप उन कंपेटिबिलिटीज की बात करें जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ से, वो चीजें नहीं हैं. तो हर माशरे में ये चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क है कि ये चीजें जो है वो सुसाइडल बिहेवियर की तरफ धकेलेंगी. इसका पैसे से ताल्लुक नहीं है. बेसिक नेसेसिटीज हर जगह मौजूद हो सकती हैं, लेकिन अगर वो फुलफिलमेंट रीच नहीं हो रही, वो चीज लोग जो हैं अपनी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, करियर की भी हो सकती है इसमें. इसमें जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग सब कुछ छोड़कर और ऐसा काम करने में अपनी जो है वो कामयाबी समझते हैं जिससे उनको एहसास से जिम्मेदारी भी हो और उनको जिंदगी से बहुत ज्यादा उम्मीद भी बरकरार रहे. तो ये सारी चीजें वो हैं जो जरूरी नहीं है कि सिर्फ किसी भी माशरे, एक माशरे की नाकामी है. लेकिन मुझे लगता है कि ये जरूरी है कि हम माशरे में वो चीजें जो कि किसी को नाउमीदी की तरफ धकेल रही हैं उन पे काम करें. इसमें सोशल कॉन्फ्लिक्ट सबसे बड़ा रोल है.
ठीक,
हर जगह.
एक अहम बात ये कि क्या खुदकुशी का फैसला एक लम्हे में इंसान कर लेता है, या इसमें कई दिन, कई हफ्ते या कई महीने लग जाते हैं? जो अपनी जान लेना कोई आसान काम तो है नहीं, लेकिन हो सकता है कि ये किसी एक लम्हे में इंसान सोचता हो कि बस अब सब खत्म करना है.
ऐसा वो लम्हा आने में भी कई अरसा लग सकता है, बहुत अरसा लग सकता है. मैं आपको यही बात कह रही हूँ कि वो लम्हा एकदम से नहीं आता, उसके पीछे बहुत अरसे की नाउमीदी जैसे कहना चाहिए फेयरलेसनेस, इसमें सब्सटेंस अब्यूज भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है और इसमें बहुत सारी सिग्निफिकेंट चीजें अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। अगर आप कहें तो वार्निंग साइंस बहुत ही ज्यादा जो है वो प्रोमिनेंट होते हैं जो कि हेल्थ को और मेंटल हेल्थ दोनों की निशानदेही कर रहे होते हैं। ये एक दिन में फैसला जरूरी है कि हाँ ये आप कह सकते हैं कि अगर उस एक लम्हे में वो किसी से बात कर ले या उस एक लम्हे में आप उसको देख सकें
रहनुमाई फराम कर
सकें तो वो लम्हा गुजर जाएगा और आप उसको दोबारा वापस खींच सकते हैं। लेकिन वो लम्हा आने में और दिमाग को उस नेगेटिविटी में जाने के लिए भी पीछे बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे अवामिल हैं जो कि काम कर रहे हैं, जिसमें फिजियोलॉजिकल भी हैं, साइकोलॉजिकल भी हैं, एनवायरमेंटल भी हैं, तीनों चीजें काम कर रही हैं।
ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें मालूमात देने का। मेरा ख्याल है ये मौजू एक प्रोग्राम में तो हम इसे कवर नहीं कर पाएंगे, हम दोबारा भी आपको ज़हमत देंगे और इस बारे में मज़ीद शायद हमें बात करने की ज़रूरत है, हमें भी और मीडिया के दूसरे आउटलेट्स को भी फिर आपको ज़हमत देंगे। आपका बहुत शुक्रिया। हमें डॉक्टर रामेश फातिमा ने ज्वाइन किया है जिनका ताल्लुक मुल्तान से है, एक हसास दिल वाली हसास मिजाज वाली राइटर भी हैं लेकिन एक डॉक्टर भी हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं। रामेश, आप गांव देहात में काम करती रही हैं, क्या वहां खुदकुशी करने वालों की या खुदकुशी की कोशिश करने वालों की शरह शहरों जितनी है या गांव देहात के लोग खुदकुशी नहीं करते?
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि गांव देहात के लोग खुदकुशी नहीं करते। मेरी राय में वहाँ ये शरह शहरों के मुकाबले में काफी ज्यादा है, लेकिन वहाँ के केसेस रिपोर्ट नहीं होते। एक तो वो लोग जो घरों में स्प्रे पी लेते हैं या गंदम की गोलियां खा लेते हैं, अब तो वो उनको घर से बाहर ही, अगर वो कोई खातून हो तो वो उसे घर से बाहर ही नहीं निकालेंगे कि ये हमारे लिए एक शर्म की बात है कि हमारी बेटी ने या बीवी ने या बहन ने उसने ऐसा कुछ कर लिया है। अगर कोई उसे हॉस्पिटल ले ही आए तो वो जो गोल्डन टाइम पीरियड जिसमें शायद आप उस इंसान की जान बचा सकते हैं, वो सारा गुजरने के बाद 3-4-5-6 घंटे के बाद वो लेके आते हैं। टेरिफरी में वैसे भी इतनी हमारे पास फैसिलिटीज नहीं होती कि हम किसी को बचा सकें, लेकिन जिनको बचाया जा भी सके उसमें भी एक गोल्डन टाइम पीरियड होता है, उसमें अफेक्ट करें तो बचा सकते हैं। वो गुजरने के बाद 5-6 घंटे के बाद 10 घंटे के बाद जब वो लेके आते हैं तो रिसीव्ड एक्सपायर्ड होते हैं, मतलब अक्सर औकात तो उनमें कुछ भी नहीं होता। बाद में घर वालों से पूछे, पहले तो वो छुपा रहे होते हैं, फिर उनमें से कोई एक बंदा होता है अगर आपके काबू आ जाए या आप उसको जरा थोड़ा सा थ्रेट करें कि नहीं हम ऐसे नहीं जाने देंगे, ये पुलिस केस है, हम पुलिस को बुलाएंगे और पुलिस को आप इन्फॉर्म कर दें, फिर उनमें से कोई एक बंदा सच बताना शुरू करता है या वो करता है कि अच्छा इसने खुद पी थी या ऐसे था या कोई भी वजह हो सकती है। लड़कियों को पढ़ने नहीं देते वहां पे।
तो क्या क्या असबाब और क्या क्या असबाब होते हैं इन रूरल एरियाज में, आप हमें बताएं।
रूरल एरियाज में मैंने जो खुद जितने केसेस देखे हैं उसमें कम अज कम भी 3-4 खवातीन, मैंने एक साल काम किया रूरल एरिया में, 3-4 खवातीन ऐसी थी जिनके जिन्होंने बेटियां थी 5-6 और उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि आगे बेटा ही होना चाहिए, हर हाल में बेटा होना चाहिए। और तो नेक्स्ट जैसे ही उन्होंने देखा कि अच्छा ये एक दफा फिर बेटी हुई है, जो भी अवेलेबल स्प्रे पड़ा था या गंदम की गोलियां थी, जो भी चीज मिली उनको या काला पत्थर मिला वो पी के उस औरत ने अपनी वो कर ली या बच्चियों को भी पिला दी कि कम अज कम मैं इस अजियत से दोबारा ना गुजरूं, रोज की मारपीट से और तानों से वो तंग आ गई होगी। दूसरे नंबर पे जो लड़के या लड़कियां थी, या तो शादी वहां हो रही है जहां वो नहीं करना चाहते या वहां नहीं हो रही जहां वो करना चाहते।
ठीक।
इतने यंग कड़ियल जवान, इतनी मतलब आप सोच नहीं सकते कि एक 20-22 साल का अच्छा खासा सेहतमंद बंदा जिस रूटीन में आप उससे शायद इंटरेक्ट करें तो आपको बहुत अच्छा लगे या क्या, वो आपके सामने ऐसी हालत में पड़ा होता है कि इंसान खुद को शदीद तरीन बेबस महसूस करता है कि मैं इसके लिए अब क्या करूं।
तो घर वालों को समझ नहीं आती जब इस तरह के वाकयात किसी खानदान में हो जाते हैं तो लोग ये सोचते नहीं कि फिर किसी और बच्चों को बचा लें और ऐसा ना करें।
नहीं, मेरा नहीं ख्याल इससे कोई बहुत ज्यादा किसी के एटीट्यूड पे या इन चीजों पे फर्क पड़ता है। वो उल्टा एक खातून हमारे पास एक दफा उनको लेकर आए, उसके शौहर ने शायद दूसरी या तीसरी शादी, बाहर वो पहले 2 शादियां कर चुका था, उसने एक और शादी कर ली थी, उसने वो काला पत्थर पी लिया उनको हम काउंसिल करते रहे उन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी ना उन्होंने पेशेंट रेफर करने दिया हम उन्होंने इतना हंगामा किया हम लोगों को चेक किया पुलिस को चेक किया वो औरत उन लोगों ने वही मार ली लेकिन वो आगे कहीं उसके ट्रीटमेंट कराने नहीं लेकर गए कुछ भी नहीं किया कि ये मर्द ऐसे करते हैं फिर क्या हो गया इसमें कौन सा इतनी बड़ी बात है इसके ऊपर इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी बच्चे की ऐसी छोड़ दी खुद भी चली गई अब तो कुछ भी नहीं रहा
अफसोस ये बताएं कि जब बड़े अस्पताल और बेशतर डॉक्टर शहरों में काम करते हैं तो गांव देहात को इस कदर माहिरीन नफ्सियात दस्तियाब हैं कि वो लोगों का इलाज या थेरेपी कर सकें
गांव देहात में तो इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं है
तो फिर कैसे इलाज होता है
इसका अभी तो शहरों में भी ऐसा ऐसा कुछ कुछ जगहों पर है बहुत बहुत कम जगहों पर है लेकिन निस्बतन पिछले 10 सालों में अगर जितना जब हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की उसके मुकाबले में अब देखें तो हाँ कुछ फर्क जरूर पड़ा है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी फर्क ना पड़ा हो थोड़ा बहुत है सही कि अच्छा अब लोग इस चीज को थोड़ा सा संजीदा लेना शुरू हुए हैं शहरों में कि उन्हें साइकेट्रिक काउंसलिंग की साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत है या उन्हें किसी से बात करनी चाहिए लेकिन गाँव देहातों में वहाँ तो अवल तो वो इस चीज को मानते हैं उनके साथ में नफसियाती अमराज या नफसियाती मसायल तो कुछ होते ही नहीं है जो कुछ भी है वो तावीज से वो जादू से या वो झाड़ू टूने ये वो वगैरह इस किस्म की चीजों से काबू हो सकता है इसके अलावा और कोई मसला नहीं होता वहाँ तो मेरा ख्याल है कई कम अज कम भी 100 साल शायद और लगेंगे गाँव देहात जितना पीछे है इस मामले में
अच्छा आप जाहिर है कि मेडिकल की तालिबा रही हैं हमने सुना है कि मेडिकल के तालिबे इल्म अच्छे नंबर नहीं आते तो अपनी जान ले लेते हैं या ऐसी कोशिश करते हैं तो आप ऐसे किसी वाक़े के बारे में बता सकती हैं हमें क्या ये सच बात है या ये सिर्फ एग्जैजरेट करते हैं लोग
नहीं एग्जैजरेट बिल्कुल नहीं करते बिल्कुल सच बात है तीन चार वर्ष कबल की बात है कायदे आजम मेडिकल कॉलेज के एक लड़के ने खुदकुशी की थी उसका रिजल्ट आया था वो उसमें सप्ली आ गई थी उसकी दोबारा डिटेन हो गया था वो और ये सिर्फ एक नहीं है मैं उसका नाम नहीं ले रही लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं आप अगर आप कोई भी डॉक्टर्स का पेज या सोशल मीडिया या कोई भी इस चीज़ को फॉलो करें आपको रिजल्ट के बाद हर साल रिजल्ट के बाद आपको कम से कम भी 5 से 6 न्यूज ऐसी लाजमी सुनने को मिलेंगी या उसके अलावा है जो रिपोर्ट नहीं होते क्योंकि आपका फैमिली का प्रेशर भी है आपके ऊपर आप डॉक्टर हैं कुछ बच्चे खुद भी नहीं वो जाहिर है आपने सारी जिंदगी टॉप किया है मैट्रिक में भी टॉप किया एसएससी में भी टॉप किया मेडिकल कॉलेज में फिर सारे टॉपर्स होते हैं वो इतनी सारी जो क्रीम होती है उसमें से किसी ने कभी आपकी बैड लक है कभी आपको कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा कभी आपके मार्क्स किसी में कम आ गए बाद अगर किसी प्रोफेसर की आपसे लगती होती है वो आपको आगे नहीं जाने दे रहा उस चीज को इतने सारे कामयाबियों के बाद वो जो एक नाकाम नहीं होती है ना उसको हजम नहीं कर सकते या उस फैमिली का प्रेशर अलग है अपने नाकाम होने का या आपके दोस्त हैं वो सारे पास हो गए आप अकेले हैं जिसकी सप्ली आ गई है बड़ा मुश्किल होता है हमारे भी हम साथ थे हमारे एक दो फ्रेंड्स की आई थी हमारे लिए उसे संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था शायद अगर हम 24 घंटे उसके साथ ना रहते उस पर नजर ना रखते तो हम उसको भी ऐसे ही खो देते लेकिन हमने बड़ा यूँ समझना कि सबकी ड्यूटी लगी हुई थी कि इसको अकेले नहीं छोड़ना किसी ने
रामेश आप समाजी इश्यूज पर ब्लॉग्स भी लिखती हैं कॉलम लिखती हैं तो आप बताएं कि इस माशरे में क्या तब्दीली लाएं कि हमारे बच्चे अपनी जान ना लें क्या कमी है क्या खामी है क्या हमें करना चाहिए
मेरे पास चले मैं यहाँ ये सबसे पहले ना पता नहीं लोग इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे अभी कल की बात है हालांकि अब मैं रूरल एरिया में नहीं हूँ अब मैं शहर में काम कर रही हूँ हमारे पास कल एक लड़के को लेकर आए उसकी उम्र को तकरीबन 23 साल थी वो शायद मतलब मैं या आप या उसकी जगह हम में से कोई भी हो सकता था इतनी बुरी कंडीशन में उस बेचारे को लेकर आए मैं जब उससे पूछ रही थी कि तुम्हें हुआ क्या है कितने दिनों से बीमार हूँ मैं उसकी हिस्ट्री ले रही थी तो उसने अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटाया मुझे कहता है इनको बाहर भेजना मैं आपको बताता हूँ। उसने खैर मुझे बताया जो कहानी थी वो ये थी कि उसने अपने घर वालों में से किसी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ उसकी अपनी मदर से बात हुई थी कि वो किसी लड़की को पसंद करता था। उसने अपनी मदर से कहा कि मैंने शादी करनी है तो उसी से ही करनी, आप मेरी से शादी करवा दें। उन्होंने इनकार कर दिया कि मैंने ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। उस लड़के ने दूसरी कोई बात नहीं सोची, वो कहता मैं गया, मैंने जाके स्प्रे पड़ी थी स्टोर में, मैंने वो पी ली। वो बेचारा रीनल फेलियर में भी चला गया, उसके फेफड़े भी मुतासर हो गए बुरी तरह। वो इतनी सिक कंडीशन में था और उस हालत में भी मेरी मेरी पता नहीं, लोग कहते हैं डॉक्टर बेहोश होते हैं, हम गैर इतने लोगों को रोज आप देख रहे होते हैं, सिक इतने पेशेंट्स होते हैं, कई एक्सपायर हो जाते हैं, आप हर किसी के लिए नहीं रो सकते। लेकिन उस लड़के ने अचानक से मुझे कहा आप मुझसे एक वादा करेंगी? मैंने कहा क्या? मैं ठीक हो जाऊं तो आप मेरी उससे शादी करवा देंगी? लिटरली मेरी आंखों में आंसू।
रामेश ये तो बेवकूफी की बात है, ये कोई जिंदगी जो है इतनी कीमती चीज है, एक शख्स के मोहब्बत नाकाम हो गई तो आगे इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है दोबारा मोहब्बत हो जाती है, ये बच्चों को बताने वाली बात है कि एक शख्स से अगर आपकी मोहब्बत नाकाम हो गई।
लेकिन ये बात पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए, वो एक जज्बाती फेज होता है। अगर आप उसमें पहले ऐसे ब्लंटली इनकार करने के बजाय ये कहते हैं ठीक है सोचते हैं, बाद अवकात वो फेज गुजर जाता है, इंसान को उस शख्स से मोहब्बत भी नहीं रहती, उसका नाम भी नहीं याद रहता।
बिल्कुल।
लेकिन वो वाला जो एक फेज होता है उसमें अगर मुसलसल की मुखालफत की जाए या यूं करके आपको कहा जाए कि हाँ तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, वो तो नहीं हो सकता, पीछे हो सकता है और भी फैक्टर्स हों, लेकिन बाहर कुछ एक लम्हा होता है जिसमें इंसान कुछ भी कर सकता है, उसमें बहुत सारे लोग ये भी कर लेते हैं।
ठीक है, नहीं रामेश,
ये चीज समझनी चाहिए कि आप आहिस्ता आहिस्ता कम समझा सकते हैं, पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए कि ना उनको इस तरह ऐसे इनकार करें, ना उनको पढ़ाई के लिए प्रेशराइज करें। कोई बात नहीं, मैं और आप भी बहुत बार फेल हुए होंगे, आखिर दुनिया में इंसान ही फेल होते हैं, मैं तो हुई हूँ और भी लोग फेल होते हैं, लेकिन इस चीज के ऊपर अपने बच्चों को इतना प्रेशराइज करना या वो आपसे बात ही नहीं कर सकते और उनके पास एक फरार बेहतरीन, हालांकि हमको जींस भी हमारी जान छोड़ दें, हमें जवाब ना देना पड़े कि ये क्या हुआ था।
रामेश आप बिल्कुल बहुत खिदमत कर रही हैं और मैं ख्वाहिश करूंगा, मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में मजामीन भी लिखें ताकि जो काउंसलिंग बच्चों को अपने घर से और असातिज़ा से दस्तियाब नहीं है वो इस तरीके से उन्हें मिले। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और हमें सूरत हाल बताने के लिए। अब हम ईमान रंगून वाला से बात करेंगे, उन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया है, साइकोथेरेपिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ईमान, हम आज ख़ुदकुशी के रुझानात पे बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग, हज़ारों लोग एक साल में ख़ुदकुशी कर लेते हैं, तो आप हमें बताएं कि आप इलाज या थेरेपी करती हैं तो कैसे लोगों की मदद करती हैं, कैसे उन्हें ख़ुदकुशी करने से रोकती हैं, ऐसे ख्यालात कैसे उनके बदलती हैं?
Assalamualaikum sir, JazakAllah for having me. इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं और सोसाइटी केस जब आता है हमारे पास इसके दो तीन डिफरेंट लेवल्स होते हैं। एक होता है कि वो अभी बिल्कुल शुरुआत होती है कि सर्विस के बारे में मतलब सोच रहे होते हैं, कोई आइडिया नहीं होता कि कैसे करेंगे कब करेंगे, लेकिन सोच रहे होते हैं कि हम लोग अपनी लाइफ एंड कर दें, वर्क फिट नहीं है, हमें मज़ा नहीं आ रहा। फिर एक स्टेज आता है कि वो सोच भी रहे हैं उसके बारे में और उसके बारे में प्लान भी है कि ठीक है हमने सोच लिया कि हमने इस तरीके से अपनी लाइफ को एंड करना है, इस टाइम पे करना है, इस तरीके से करना है। और फिर जो फाइनल स्टेज होता है, जो सबसे सीरियस स्टेज होगा, उस पर प्लान भी है, सोच भी है उसके बारे में, पहले भी कोशिश कर चुका है। अब डिपेंडिंग ऑन जिस स्टेज में है उस हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान डिफरेंट होता है। कुछ कुछ बच्चों को जरूरत होती है कि आप सिर्फ उनकी बात सुने कि उनके साथ हो क्या रहा है, वो अंदर फील क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। कुछ केसेस के लिए, सुसाइडल केसेस के लिए सिर्फ ये काफी होता है, लेकिन सबके लिए नहीं। अब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप उन बच्चों के थॉट्स को पर काम करते हैं कि आप उनके थॉट्स को चेंज करें, आप उनके बिहेवियर को पर काम करते हैं कि जो भी इनके नेगेटिव बिहेवियर है जिसकी वजह से ये थॉट फ्यूल हो रहे हैं उसको हम थोड़ा चेंज करें। कभी कभी पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है कि पेरेंट्स में क्या तो कमी कोई चीज है या कुछ कर रहे हैं या कह रहे हैं जो गलत है जिसकी वजह से उनका बच्चा और इस चीज में डूब रहा है। डिपेंडिंग ऑन द पर्सन डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं।
तो इसमें कामयाबी होती है, 100% कामयाबी हो जाती है या इसमें नाकामी भी हो जाती है और फिर लोग खुदकुशी भी कर लेते हैं, क्या इसमें रेशियो क्या है?
100% तो कामयाबी तो किसी चीज में भी नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर सक्सेस का डिपेंड करता है थेरेपिस्ट की क्वालिफिकेशन और एक्सपर्टीज के ऊपर। एंड जब मैं क्वालिफिकेशन कहती हूँ मेरा मतलब ये नहीं कि लाइक बहुत कोई फैंसी डिग्री हो, लेकिन ट्रेनिंग के ऊपर। अब जैसे फॉर इंस्टेंस आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में कोई एज सच स्टैंडर्ड नहीं है कि अगर आपकी ये स्पेसिफिक एक्सपीरियंस है या ये स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है तो फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ थेरेपिस्ट. मतलब आम आदमी बोर्ड का अपने आपको कहता है कि ओ आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो वो थेरेपी पर लग जाता है. तो अ लॉट ऑफ केसेस जैसे मेरे पास पर्सनली आते हैं वो बच्चे हैं जिनके पहले से सुसाइडल थॉट्स हुए हैं, एक आध बार अटेम्प्ट भी किया है, लेकिन जो थेरेपिस्ट था वो क्वालिफाइड नहीं था, कॉम्पिटेंस नहीं थी उसमें कि उस बच्चे को हैंडल कैसे करें, तो वो बच्चा और उस चीज में वर्स हो गया. तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका थेरेपिस्ट है आपको जो हेल्प कर रहा हो वो अपने काम में यू नो अच्छा एक्सपर्ट आता हो.
अच्छा, क्या बच्चों के लिए और बड़ों के लिए अलग अलग माहिरीन नफ्सियात होते हैं या कोई भी माहिर बच्चों की मैंने स्कूल एज के बच्चों की हेल्प कर सकता है या इसके लिए अलग हमें यानी हम देखते हैं माहिरीन नफ्सियात इसके लिए अलग पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, अलग तरबियत हासिल करनी पड़ती है?
काउंसलिंग और थेरेपी के प्रोफेशन में ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए डिफरेंट ट्रेनिंग होती हैं. जैसे फॉर इंस्टेंस स्कूल काउंसलिंग जो है वो होता है प्राइमरीली स्कूल एज बच्चों के लिए कि इनके अगर स्कूल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जिसके अंदर कभी कभी बुलियंग सुसाइडल थॉट्स ये सब आता है उसको हैंडल करने का तरीका अलग होता है, अडल्ट से काम करने का तरीका अलग होता है. और ऑब्वियसली बिकॉज बच्चे और अडल्ट सेम तरीके से सोचते भी नहीं है, बिहेव भी नहीं करते हैं, तो यूजली रिकमेंडेड कि आप अगर दोनों पॉपुलेशन से काम करें तो आप दोनों तरीके की ट्रेनिंग लें.
ठीक है, तो अब ये बताएं कि अब आपको पता चल गया है पेशेंट एक मौजूद है या पेशेंट कह लें या जो भी आप कह लें केस आपके पास मौजूद है, ऐसा होता है कि लोग दरमियान से इलाज छोड़ के भाग जाते हैं यानी या तो कि महंगा है इलाज या ये कि वो इलाज से मतलब खौफजदा हैं किसी वजह से, ऐसा भी होता है?
जी जी, बहुत थेरेपी में तो वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज यही होता है कि या तो लोग आना छोड़ देते हैं, कभी पैसों की वजह से होता है, कभी इसलिए होता है कि अम्मी अब्बू को पता चल गया और फिर अम्मी अब्बू खुश नहीं है तो उनको छोड़ना पड़ता है. कभी कभार थेरेपी में ये भी होता है कि क्योंकि आप अपने आप से अपने आप को जानने लगते हैं और क्योंकि आप अपने आप से जब समझेंगे कि मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ, मैं बिहेवियर ऐसा क्यों है, तो कभी कभी वो थोड़ा डर लगता है कि अच्छा मेरे अंदर ये भी है, तो उससे कभी कभी लोग स्पेशली बच्चे घबरा के एस्केप ढूंढना चाहते हैं तो फिर समटाइम्स दे डोंट कंटिन्यू. और कभी कभी बहुत चंद सी बात होती है कि थेरेपिस्ट से बनती नहीं है, तो जस्ट लाइक हमारी दोस्ती सबसे नहीं होती सबसे थेरेपी भी हम फिर नहीं कर पाते क्योंकि वो मैचिंग नहीं होती.
तो फिर इसका मतलब है कि वहाँ पे उसको थेरेपिस्ट बदलना चाहिए. अच्छा, जब कोई शख्स खुदकुशी की कोशिश में नाकाम हो जाता है या उसे बचा लिया जाता है तो जिंदगी भर के लिए खतरा टल जाता है या फिर दोबारा यानी ये इम्कान और खतरा ये मौजूद रहता है?
अगेन ये पर्सन टू पर्सन केस होता है. कुछ कुछ बच्चे या कुछ अडल्ट भी अटेम्प्ट के बाद या तो वो थेरेपी जब सीख करते हैं या हेल्प सीख करते हैं तो उनका जो डेंजर एलिमेंट होता है वो खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ के लिए डज कंटिन्यू. अब रिसर्च शोज के अगर आप रिस्क फैक्टर देखें कि कौन सा बच्चा या कौन सा इंसान ज्यादा लाइक है सुसाइड अटेम्प्ट करने का या सुसाइड कमिट करने का, वो है जो पहले अटेम्प्ट कर चुका है. तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको पता है कि किसी की हिस्ट्री में ये चीज है तो उसको डिस्ट्रिगार्ड नहीं करें, यू कंसीडर इट एज समथिंग टू वर्क ऑन.
अच्छा, कुछ अस्पतालों ने और मुख्तलिफ इदारों ने हेल्प लाइंस कायम की हुई हैं, इनसे भी कुछ फ़ायदा होता है या उस शख्स को थेरेपिस्ट के पास आना उसका ज़रूरी है और मुस्तकिल इलाज ज़रूरी है क्योंकि हेल्प लाइन पर तो आप एक आध दफ़ा ही बात कर सकते हैं, मुस्तकिल तो नहीं कर सकते?
जी, सुसाइड में ये होता है कि पहले से सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन काफ़ी टाइम से जो रहा है कि आपको अगर डिप्रेशन है जब भी आप सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं, तो ये ऑब्वियसली बिल्कुल गलत है. बहुत से केसेस सुसाइड में ये होते हैं कि वो जज्बे में आके कर लेते हैं, यू नो इन द मोमेंट एकदम से गुस्सा आया, एकदम से अपसेट हो गए तो बस हुआ कि हम लोग कर लें. उन केसेज में हेल्पलाइन बहुत हेल्पफुल होती हैं, स्पेशली अगर दूसरे एंड पर जो है थोड़ा ट्रेन बंदा बैठा हो. उसमें क्या होता है कि आपके जो एकदम से इमोशन हाई हो रहे होते हैं वो आपको थोड़ा ठंडा करता है, थोड़ा काम डाउन कर लेता है. और जैसे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन अगर किसी का एक्चुअल प्रॉब्लम है, हेल्पलाइन मे बी सुसाइटल काउंसलिंग के लिए बेस्ट नहीं है फॉर द लॉन्ग टर्म फॉर वेरी सीवियर केसेस, लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा आइडिया है.
ठीक है, ईमान रंगून वाला हमसे बात करनी थी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और हमें हमारी मालूमात में बहुत इजाफा किया. मसला खुदकुशी का हमारे माशरे में हमारे मुल्क में हर जगह ये फैलता जा रहा है. दुनिया भर में हर साल 800,000 अफराद खुदकुशी कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी तादाद है. पाकिस्तान में भी ये शराब बढ़ रही है. इस बारे में मज़ीद बात करते हैं डॉक्टर आसिफ फरूखी से. वैसे तो वो उस्ताद हैं, अदब से ताल्लुक़ है गहरा, लेकिन वो पेशे के अतबार से साइकेट्रिस्ट भी हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अभी हम डॉक्टर सदफ़ अहमद से गुफ्तगू कर रहे थे जो साइकोलॉजिस्ट हैं। इस साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या फ़र्क होता है और ये दोनों खुदकुशी के बारे में सोचने वालों को कैसे ज़िंदगी की तरफ वापस ला सकते हैं?
हाँ देखिए, एक बात तो आपने मेरे तारफ में कराई, मैं साइकाइट्रिस्ट नहीं हूँ, मैं फिजिशियन हूँ और मैंने साइकाइट्री में काम किया है।
ठीक है,
साइकाइट्रिस्ट तो वो होता है जो साइकाइट्री की प्रैक्टिस करता है, यानी जाहिर है कि ये मेडिसिन की एक ब्रांच है जो मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ काम करती है, उसकी एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है। साइकाइट्रिस्ट दवा और इलाज के जरिए काम करता है। एक बहुत मोटा सा फर्क बता रहा हूँ, और साइकोलॉजिस्ट दवाओं से ज्यादा सजेशन, गुफ्तगू, तदबीर इसके जरिए से बात करता है, तो दोनों में बड़ा फर्क है।
ठीक है, तो अब ये बताएं कि जब कोई शख्स उसके सुसाइडल थॉट्स हों या खुदकुशी का अटेम्प्ट कर चुका हो तो फिर कैसे उसे जिंदगी की तरफ वापस लाया जा सकता है और इसमें किसका किरदार ज्यादा अहम है?
देखिए, इसमें किरदार सबका बहुत अहम होता है, माशरे के लोगों का, दोस्त अहबाब का, वालदैन का, असाध्या का, क्योंकि जो लोग खुदकुशी करते हैं या करने के बारे में सोचते हैं वो अक्सर कुछ ऐसी अलामतें या इशारे उनके जरिए से मिलते हैं जिसके जरिए से जिसको आप कह सकते हैं कि ये एक कॉज फॉर अलार्म है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। वो अपनी जिंदगी के बारे में मायूसी का इजहार करते हैं, कभी कभी वो एक नाकाम खुदकुशी की कोशिश करते हैं। अच्छा, इन सब लोगों का अपना किरदार है, यानी दोस्त अहबाब सबसे पहले ये देख सकते हैं कि अगर कोई उनका दोस्त गुफ्तगू के बजाय विड्रॉन है, अलग थलग बैठा हुआ है, चीजों में दिलचस्पी नहीं ले रहा, सोशलाइज नहीं कर रहा। वालदैन ये देख सकते हैं कि खाना पीना कम हो गया है, कपड़ों की तरफ बेतवज्जो ही है, दोस्तों के साथ नहीं जा रहा। और असाध्या ये देख सकते हैं कि पढ़ाई में, रोजमर्रा के मामूलात में दिलचस्पी कम से कमतर होती जा रही है, ये शख्स अपने आप में सिमट कर रह गया है। तो इन चीजों को पहचानना चाहिए और ये खतरे की निशानियां हैं। मगर गड़बड़ की बात यह है कि हमारे माशरे में खतरे की निशानियों के बारे में बात नहीं की जाती, उनको पहचानना और उसको पहचानने के बाद अमली इकदाम करना वो बहुत बड़ा एक स्टिग्मा समझा जाता है। इसी वजह से जो लोग ये अपनी तकलीफ का एक अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए इजहार कर रहे हैं, हम उनको रोक नहीं पाते।
अच्छा, आपने कहा कि जब कोई शख्स इस बारे में गुफ्तगू कर रहा हो, यानी अंदाज़ा हो जाता है कि ये इस तरह सोच रहा है तो उसे रोका जा सकता है, तो अब आपका अदब से ताल्लुक है और हम कई शायरों के बारे में जानते हैं, जैसे शुगैब जलाली, सारा शगुफ्ता, सरवत हुसैन और शायद मुस्तफ़ा जैदी ने भी खुदकुशी की थी। अब हर शायर कहता है कि मैं तेरी मोहब्बत में मर जाऊँगा, अब ये कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कौन सा शायर वाकई खुदकुशी करना चाह रहा है? ये कैसे अंदाज़ा लगाते हैं, क्यों शायर अदीब खुदकुशी कर लेते हैं?
देखिए, बहुत से शायरों क्या एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन की हिस होती है, जैसे जॉन भाई ने कहा था कि खुद को मिटा लिया और मलाल नहीं, तो इस तरह वो अपनी जिंदगी के और अपने हालात से इतने मायूस हो जाते हैं कि उन्हें अपने आप को तबाह करने के अलावा कोई और चारा नहीं मिलता। ये शायर और अदीब इसलिए नुमाया हो जाते हैं कि लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं और वो हसास लोग होते हैं, इसलिए कोई शायर या अदीब या पेंटर उसकी खुदकुशी माशरे को एक बहुत तकलीफ ये चीज मालूम होती है।
दुरुस्त, तो ये कहना क्या गलत होगा कि पाकिस्तानी माशरा खुदकुशी के लिए बेहतरीन मौके फराहम करता है?
शायद दुनिया का हर माशरा फराहम करता है, पाकिस्तान के माशरे में एक बहुत बड़ी गड़बड़ ये है कि हम खुदकुशी को के लिए डिनायल के बहुत बड़े मरहले में, यानी जितने लोगों के अभी आपने नाम लिए उनके बारे में, कई लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि नहीं साहब, इन्होंने खुदकुशी नहीं की थी, इनके साथ तो फला हादसा पेश आ गया था। तो हम एक तो खुदकुशी को उसके नाम से नहीं जानते, क्योंकि हमारे मजहब में खुदकुशी को बहुत ज्यादा डिस्करेज किया जाता है, तो हम खुदकुशी के बारे में नहीं सोचते, खुदकुशी के बारे में नहीं कोई बात करना पसंद करते। लेकिन इसकी वजह से ये हुआ है कि अब माशरे में जो मायूसी और तबाही बढ़ रही है, लोगों में खुदकुशी का रुझान भी बहुत बढ़ रहा है। पाकिस्तान में दूसरे ममालिक के मुकाबले में खुदकुशी में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है, और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इसका बहुत बड़ा जो ये इजाफा हुआ है, इसकी तादाद नौजवानों और कम उम्र अफराद में है। हम नौजवानों को वो तरबियत, वो रहनुमाई या वो मदद फराहम नहीं करते जिसके जरिए उनकी जिंदगी को महफूज किया जा सकता है।
तो आप तो एक उस्ताद हैं, तो अब ये सवाल फिर आपसे बनता है कि जैसे मैट्रिक के इम्तहान में फेल होने वाला बच्चा खुदकुशी कर लेता है, या मेडिकल का तालिब इल्म, अभी हम एक रामेश डॉक्टर रामेश फातमा से बात कर रहे थे, उनसे ही बात हो रही थी कि मेडिकल के तालिब के कम नंबर आते हैं, वो खुदकुशी कर लेता है, तो क्यों नहीं असातज़ा बताते बच्चों को कि कोई बात नहीं, अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आए या आप फेल हो गए तो अगले साल आप फिर मेहनत करके नंबर ज़्यादा ला सकते हैं। क्या क्या खामी कमी ये कोताही हो जाती है कि असातज़ा और तालिब इल्मों का रिश्ता कमज़ोर हो जाता है और वो खुदकुशी कर लेते हैं?
ऐसा होता है कि वालदैन की तरफ से भी और असातज़ा की तरफ से भी तालिब इल्मों पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है कि अगर आप इतने नंबर नहीं लाए, अगर आपकी ये पोजीशन नहीं आई, ये मेरिट नहीं आया, तो फिर तो कोई बात ही नहीं, यानी इतने नंबर ले आओ कि मेडिसिन में या इंजीनियरिंग में दाखिला हो जाए या अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाए और किसी वजह से वो तालिब इल्म उतने नंबर नहीं ला पाया, तो फिर उसको लगता है कि ज़िंदगी बेकार हो गई या मैंने लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। तो ये इतना प्रेशर बाद तालिब इल्मों पर पड़ जाता है कि वो फिर अपनी ज़िंदगी को खुद अपने हाथों तबाह करने पर तुल जाते हैं। ये प्रेशर उनके ऊपर दूसरे लोगों की तरफ से आता है।
जी ठीक है, डॉक्टर आसिफ फर्रुखी हमसे बात करते हैं, बहुत शुक्रिया। आपने माशरे के कुछ खामियों खला जो जिनकी वजह से बच्चे और लोग ख़ुदकुशी के बारे में सोचते हैं उस बारे में गुफ्तगू की, अदीब व शायरों के बारे में भी गुफ्तगू हुई कि वो ख़ुदकुशी कर लेते हैं, और ये अक्सर हमारे माशरे में बात की जाती है कि ज़्यादा ज़हीन लोग ख़ुदकुशी कर लेते हैं, मालूम नहीं ये ख्याल कहाँ से क्यों आया, हर तरह के लोग ख़ुदकुशी करते हैं, उनमें ज़हीन और गैर ज़हीन सब लोग शामिल हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पूरी दुनिया में ही जिस तरह आबादी बढ़ रही है, इस तरह ख़ुदकुशी करने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। एक साल में
मुबशर साहब, एक बात मैं और अर्ज करूंगा,
जी जी जरूर,
बस एक आध जुमला, कि हमारे यहाँ ये तादाद इसमें इतनी तेजी के साथ इजाफा हुआ है और इस तेजी का सामना करने के लिए हम ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे
जी।
तो कहीं कहीं ये ऐसा लगता है कि ये एक एपिडेमिक प्रोपोर्शन अख्तियार कर रहा है और माशरे के बाद पसमानदा इलाकों में और पसमानदा तबकों में ये बहुत बड़ी तादाद में देखने में आता है, इस पर तशवीश होना चाहिए।
ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ फर्रुखी हमसे बात कर रहे थे। अब हमें तनवीर जहां साहिबा ने ज्वाइन कर लिया है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, दानिश्वर हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तनवीर साहिबा, ये बताइए कि आपके भी इल्म है कि पाकिस्तान में ख़ुदकुशी करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है और शायद उनमें दुरुस्त फिगर तो दस्तयाब नहीं है लेकिन ख़वातीन के लिए की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है, आप भी ज़रा वीमेन राइट्स के लिए काम करती हैं, आप बताएं, आप हमें क्या बता सकती हैं कि क्या सूरत हाल है मुल्क में, कितनी ख़वातीन ख़ुदकुशी कर लेती हैं और उन्हें रोकने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए क्या किया जा रहा है?
बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब, बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो है वो क्रिटिकल मौजू है जो आपने छेड़ा हुआ है। पाकिस्तान की सोसाइटी में हमें हमेशा से ये गिला तो रहा है कि एक जेंडर डिस्पैरिटी पाई जाती है, औरतों के साथ अच्छा सलूक, बच्चियों के साथ अच्छा सलूक नहीं है, लेकिन ओवरऑल माशरे में भी अगर देखा जाए तो जो दो तीन बातें खुदकुशी के हवाले से बहुत अहम है
जी।
वो ये है कि हमारे मुल्क में मेंटल हेल्थ को जो है वो कोई तवज्जो ही नहीं दी जाती
जी।
कोई शख्स, किसी औरत हो मर्द हो, एक ऐसे जो है वो स्टेज पे आ जाए कि अपनी जान को जो है वो गवा देने का फैसला कर ले, तो वो कितने ज्यादा जो है वो मेंटल हेल्थ के इश्यूज जो है और कंडीशंस जो है उससे गुजरा होगा, कोई रिलीफ का सबब ही नहीं है। औरतों से जो है वो एक्सपेक्टेशन जो है वो हमारे यहाँ मर्दों के मुकाबले में डिफरेंट होती है। एक तो हमने पूरे खानदान की इज्जत गैरत हर चीज का बोझ जो है वो अपने ऊपर लादा हुआ है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि हम जो है वो खानदान की गैरत है, खानदान की इज्जत है, तो हमें एक खास सतह पे एक खास तरीके से जो है वो बिहेव करना चाहिए। अब जब वो बिहेवियर की और वो जो एक पूरी जो है वो रवैये की एक एक्सपेक्टेशन है, उससे थोड़ी सी भी डिविएशन जो है वो एक खास किस्म का गिल्ट जो है वो बच्चियों में पैदा करती है। अच्छा, अब क्योंकि इंसानी जो है वो जज्बात है, इंसान की जो है वो जिंदगी है, उसमें टेम्पटेशंस भी हैं, उसके अंदर जो है वो خواہشات بھی ہیں, جب وہ میچ نہیں کرتی اس خاندانی ایکسپیکٹیشن سے تو پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ اتنا پریشر ہے کہ اس کو شاید برداشت نہیں کیا جا سکتا, تو جینے کا کیا فائدہ ہے. تو اسپیس بہت کم ہے ہماری سوسائٹی میں بچیوں کے معاملات کو سننے کی, سمجھنے کی, اور اسے کسی خاص کانٹیکسٹ میں جو ہے وہ ایویلویٹ کرنے کی. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جو ہے وہ اگر سوسائٹی پیرنٹنگ میں ایک سطح پہ بہتر بھی ہوئے لیکن ایک سطح پہ بہت خراب بھی ہوئے ہیں. ہماری جو ہم نے بہت ہی جو ہے وہ ہائی ایکسپیکٹیشن کی ہے اپنے بچوں سے, انہیں بہت ہائی اچیور بنانے کی کوشش کی ہے, ان کے لیے جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں وہ اسٹینڈرڈ مجھے کبھی کبھی ہیومنلی پاسبل ہی نہیں لگتے. تو وہ جو اسپیس اور فلیکسیبلٹی ہے کہ جی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا مزاج ایسا نہ ہو, آپ کا جو ہے وہ ٹیمپرامنٹ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے والدین کے طے کردہ راستے کے اوپر جو ہے وہ چل کے سکسیس کا وہ ماڈل ان کو دکھا سکے جو وہ توقع کر رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ ممکنات میں ہیں, لیکن ہم ایز ایڈلٹس, ہم ایز پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو لائن کھینچ دی ہے, ہم نے جو ایکسپیکٹیشنز کی ایک جو ہے وہ ڈکٹیشن دے دی ہے, اس کو جو ہے وہ پورا کرنا بچوں کی ذمہ داری ہے. تو ایڈڈ پریشر ہے لڑکیوں پہ, ایڈڈ پریشر جو ہے وہ موریلٹی کا بھی ہے اور اخلاقیات کا بھی ہے اور بہت ساری چیزوں کا بھی ہے. بچوں کے اوپر جو ہے وہ ہائی اچیور ہونے کا بھی ہے کہ جی زندگی کے میدان میں کامیاب ہو کے دکھانا ہے. اب کامیابی میرے نزدیک بہت ریلیٹیو ٹرم ہے.
اچھا اب دیکھیں, یہ بات تو درست ہے کہ پاکستان میں بہت کم لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے, یا کریئر پلاننگ میں گھر والوں کی مدد نہیں ملتی, مرضی کے بغیر شادی ہو جاتی ہے, طلاق کے بعد بدنامی ملتی ہے, اور خواتین کو دوسری شادی کرنے کے بھی بہت کم مواقع ملتے ہیں. تو اب یہ سارے مسائل ایک دم تو پورا معاشرے میں ٹھیک نہیں ہو سکتے, لیکن کوئی طریقہ, کوئی حل آپ تجویز کر سکتی ہیں کہ کیسے پھر کیسے ٹھیک کریں؟
ہاں, وہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ ہمارے پاس جو ہے ہم اسپیس نہیں پرووائڈ کرتے
جی,
اور دوسرے یہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے سوسائٹی میں. پہلے کسی کو بات کر کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے مطمئن ہو جاتے تھے, ریلیکس ہو جاتے تھے. اب یہ فیئر ہوتا ہے کہ یہ بات سوشل میڈیا پہ ڈال دی جائے گی
جی,
یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. تو جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ سمپتھیٹک جو ہے وہ لسننگ کی جو ہے وہ اسپیس دینی چاہیے, ان کے پاس ایسے مواقع ہو کہ وہ بغیر خوف کے کسی جگہ پہ اپنے اس جو بھی وہ پریشر فیل کر رہے ہیں, جو بھی ان کا فیئر ہے, جو بھی ان کی جو کنسرنز اور کرائسز ہے وہ کسی سے شیئر کر سکے, اور شیئر کرنے کے بعد پراپر گائیڈنس بھی ہو. ہمارے ملک میں زیادہ جو ہے وہ سائیکولوجیکل سپورٹ کی ضرورت ہے, لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس ایشو پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جگہ جگہ لوگوں کے لیے کاؤنسلنگ کے جو ہے وہ اس طرح کے ادارے بنائے ہوئے ہوں جہاں پہ وہ بغیر کسی خوف کے جا کے اپنا جو ہے وہ کیتھارسس کر سکیں, اپنا جو ہے وہ جو بھی سٹریس ہے اسے جو ہے وہ ریلیف کر سکیں. ہماری سوسائٹی میں بہت کم سپیس ہے.
اچھا, اب اس میں پھر آپ بتائیں کہ کس کا کردار زیادہ بنتا ہے, حکومت کا, میڈیا کا, ہمارے تعلیمی اداروں کا, یا ظاہر ہے آپ اگر کسی این جی او سے وابستہ ہیں تو این جی اوز کا, کون کون ہے, یا مذہبی لوگوں کا یعنی کہ علماء کرام کا, کس کا رول زیادہ ہے, کیسے ٹھیک کریں سب کچھ؟
دیکھیے, یہ تو سوسائٹی کا میجر چیلنج ہے نا. تو سوسائٹی میں آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے ایشو کو کہ ایک بندہ کر سکتا ہے. اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے تو وہ مینٹل ہیلتھ کو جو ہے وہ ایک ہیلتھ ایشو کے طور پہ ریکگنائز کرے, اس کے لیے جو ہے وسائل دستیاب کرے, کیونکہ ہمارے یہاں تو ہیلتھ جو اوور آل ہیلتھ ہے اس کی مسائل, اس پہ جو وسائل خرچ کیے جاتے ہیں ہم اس سے بہتر جانتے ہیں, مینٹل ہیلتھ تو اس سے بھی کم ہے. وہ دوسری یہ ہے کہ ہمارے جو اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز بھی جو انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں, اس میں بلنگ بھی ہے, اس میں فیئر بھی ہے, اس کے اندر کمپٹیشن بھی ہے. ہمارے ہر اکیڈیمک انسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ ایک ٹرینڈ سائیکیٹرسٹ کو ہونا ضروری ہے. لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ اس کے پاس جا سکیں, اپنے جو ہے وہ صورتحال کو بیان کر سکیں. تو ایک تو ریاست ہو گئی, دوسرے اکیڈیمک انسٹیٹیوشن, پرائیویٹ نان پرائیویٹ جو سرکاری, سب کو جو ہے وہ بچوں کو یہ فیسلٹی جو ہے وہ پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ٹرینڈ پروفیشنل جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کا بندہ, سائیکالوجسٹ ان کے جو ہے وہ ادارے میں موجود ہے اور وہ مشکل کے وقت جو ہے وہ اس کو اپروچ کر سکتے ہیں اگر وہ کسی قسم کے جو ہے وہ خود بھی جو ہے وہ اس طرح کے اویئرنیس سیشن کریں ان ایشوز پہ کہ زندگی میں بہت سارے ایسے جو معاملات ہوتے ہیں جن کو آپ جو ہے وہ بڑے آرام سے ہینڈل کر سکتے ہیں لیکن جذباتیت میں آپ بہت غلط فیصلہ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کی اپنی اینگر مینجمنٹ, آپ کا اپنا اسٹریس مینجمنٹ, ریگولر پریکٹسز جو ہے وہ ہمارے اکیڈیمک انسٹیٹیوشن کا حصہ ہونی چاہیے کہ آپ تھوڑی سی جو ہے وہ بچوں اور بچیوں میں یہ شروع سے سکل ڈال دیں اور ان کو شروع سے یہ عادت ڈال دیں کہ انہیں تھوڑا سا وقت جو ہے وہ اپنے ساتھ خود کلامی کر کے کچھ ایشوز ریزالو کرنے نہ ہو سکے تو فلاں لوگ اور ادارے موجود ہیں جن کے پاس آپ جا سکتے ہیں. ہمیں اپنی سوسائٹی میں اسٹگما کو بھی ختم کرنا چاہیے کہ اگر کوئی اپنی مینٹل ہیلتھ کی بات کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں تو پاگل ہو گیا.
پہلی بات
جو نفسیاتی ڈاکٹر جو ہیں ان کو ہم بھی کہتے ہیں پاگلوں کا ڈاکٹر ہے. تو ہمارے اندر جو ہے وہ ریزسٹنس بھی بہت ہے کہ اگر کسی کو ہم نے جا کے اپنی جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کے لیے ملنا ہے یا اپنی کوئی ہمیں کوئی سائیکیٹرسٹ ہیلپ چاہیے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کیا پاگل پن ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ توڑنے کی ضرورت ہے. سول سوسائٹی کے ادارے اپنا کام کر رہے ہیں لیکن ان کو بھی جو ہے فردر جو ہے وہ ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے. وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ڈومیسٹک وائلنس کی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ سپورٹ مل جاتی ہے لیکن وہ اس طرح کی سائیکیٹرسٹ سپورٹ کے ادارے انہوں نے بھی کم بنائے ہیں. تو بحیثیت مجموعی چاہے وہ اکیڈمک, اور میں سب سے زیادہ جو ہے وہ بات یہ کروں گی کہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے میں بہت محتاط ہو کے یہ گفتگو کر رہی ہوں لیکن اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہیں خاص طور پہ جہاں پہ جو ہے وہ بچوں کو قرآن پاک وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں وہ تو سب سے زیادہ مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں صرف جو ہے وہ سائیکولوجیکل ابیوز نہیں ہوتا, وہاں پہ بہت سارا فزیکل ابیوز بھی ہوتا ہے. وہ اسٹریس جو ہے وہ انکریز کرنے کے جو ہے وہ انسٹیٹیوشن بن گئے ہیں. تو اگر وہاں سے آپ اسٹریس ریلیو کرنے کے لیے مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ ریلیجیس انسٹیٹیوشن کو کیا جو ہے وہ کردار ادا کرنا چاہیے, تو سب سے پہلے میں تو یہ سجیسٹ کروں گی کہ ریلیجیس انسٹیٹیوشنز کی پراپر مانیٹرنگ کا میکنزم بھی ایوالو ہونا چاہیے. ہم جو ہے وہ عام اسکول کو مانیٹر کرتے ہیں, وہاں ٹیچر آ رہا ہے, وہاں اسکول میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, لیکن ہمارا وہاں پہ مانیٹرنگ کا میکنزم بہت ویک ہے. سو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس کو ایک کرے گا, ہمارے پیرنٹس کو بہت ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے. انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے بچے کیوں اب نارملی بیہیو کرنا شروع ہو گئے ہیں, اس کی کیا ریزنز ہیں, اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں اور پھر ان کو جو ہے وہ یہ تاثر دیں, انہیں یہ فیلنگ دیں کہ جی آپ کوئی جو ہے وہ بیمار نہیں ہو رہے, کچھ نہیں ہے, ایک عارضی کرائسس ہے, لیٹس ریزالو دس. ان کو ایڈیشنل پریشر ڈالنے کی بجائے ان کو بہت سمپتھیٹک جو ہے وہ شولڈر دینے کی ضرورت ہے بچوں کو کہ یہ ایک فیز ہے, اوور ہو جائے گا, لیکن اس کو مل کے اس کی جو ہے وہ کازز آئیڈینٹیفائی کر کے اسے ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں سب کو کمیونٹی کی سطح پہ, ٹیچرس کی سطح پہ, پیرنٹس کی سطح پہ, اسٹیٹ کی سطح پہ, ہمیں سب کو اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ چیلنج ہے ہمارے سامنے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے جو ہے
زندگی کی طرف واپس
احساس دے سکتے ہیں کہ وہ ویلیوبل ہے اور وہ ان کی زندگی قیمتی ہے اور اس طرح سے ضائع نہیں کرنی چاہیے.
بہت شکریہ تنویر. جہاں ہم سے بات کر رہی تھیں سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ویمن رائٹس کے لیے کام کرتی ہیں. بہت شکریہ, ایک بہت اہم ایشو پر آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ہمارے معاشرے میں ایک عمومی طور پہ پاکستانی معاشرے میں کچھ مایوسی ہے, کچھ مسائل ظاہر ہے ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ خودکشی کے بارے میں سوچتے ہیں, کچھ کر گزرتے ہیں اور ہر سال ایسے لوگوں کی تعداد ہزاروں میں ہے. 2012 میں یہ تعداد 13,000 تھی, ابھی بھی خیال یہی ہے, کچھ اندازے ہیں کہ کم ہو گئی ہے تعداد, لیکن ہم نے جن ماہرین سے بات کی ان سب کا خیال ہے کہ یہ تعداد بڑھ رہی ہے, رپورٹ نہیں ہوتی. یہ ایک مسئلہ ہے, ظاہر ہے ترقی پذیر معاشروں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی, اس لیے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ درست تعداد کیا ہے. لیکن سوشل پریشر, اکیڈمک پریشر، فائنینشیل پریشرز ایسے ہیں کہ لوگ یہ اس انتہائی اقدام کے بارے میں سوچتے ہیں اور کر گزرتے ہیں. ان میں بڑی تعداد نوجوانوں کی ہوتی ہے اور یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے. اپنی اگلی نسل کو، اپنی نئی نسل کو جس نے جا کے ملک کو سنبھالنا ہے، وہ اگر خودکشی کے بارے میں سوچے گی یا خودکشی کرے گی تو ظاہر ہے یہ مناسب بات نہیں ہے. اس کے لیے سائیکولوجسٹ اور سائیکو تھراپسٹ ہیں جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور زندگی کی طرف واپس لاتے ہیں ایسے لوگوں کو، لیکن ان کی تعداد پاکستان میں بہت کم ہے. ہم یہاں پہ ترقی یافتہ ملکوں کی اور ایون بالی ووڈ کی بات کریں گے، جہاں ایسی فلمیں بنی جن میں نوجوانوں کو، خاص طور پہ لڑکیوں کو، با اختیار کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کی آزادی دینے کے لیے اسکرپٹ لکھے گئے اور ایسی فلمیں بنائی گئیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نوجوانوں کو زندگی میں کوئی مقصد فراہم کریں اور لڑکیوں کو با اختیار بنائیں. تو یہ سب ایسا سب کرنے سے خودکشی کے واقعات کم کیے جا سکتے ہیں. جن دوستوں نے آج ہمیں جوائن کیا ان کا بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. ہمارے پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گل. مبشر علی زیدی کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. نواز شریف کے صاحبزادی اور مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز نے وائس آف امریکہ کی نمائندہ ارم عباسی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں اپنی سیاسی جدوجہد، مستقبل کی حکمت عملی اور پاکستان کی سیاست میں غیر سیاسی قوتوں کے مبینہ کردار پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. آئیے اس انٹرویو کا کچھ حصہ آپ کو سنواتے ہیں.
مریم نواز کی سول ملٹری امبیلنس پر کیا ٹیک ہے؟
جو امبیلنس ہے وہ ان دی فرسٹ پلیس ہونا ہی نہیں چاہیے. جو ہمارا قانون ہے، ہمارا آئین ہے، وہ جو گرین بک آف کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر ہر ادارے کا رول، اس کا ڈومین، اس کی اتھارٹی کمپلیٹلی کلیئرلی آؤٹ لائنڈ ہے، ڈیفائنڈ ہے اور انشرائنڈ ہے ان دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اس میں سپریم کیا ہے؟ پیپلز ول، پیپلز پاور، پیپلز ریپرزینٹیوز. حکومت چلانا پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق لوگوں کے ریپرزینٹیوز کا کام ہے. تو اگر اس بیلنس کو ایک طرف زبردستی پاور اور مائٹ کے ذریعے ٹلٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ امبیلنس کریٹ نہیں ہوگا، وہ ڈیزاسٹر ہو جائے گا جو ہم اب دیکھ رہے ہیں. پاکستان کی انفارچونیٹلی جو ہسٹری ہے نا، جمہوریت جو اس میں ہے نا، وہ 70 سے سسپینڈڈ رہی ہے، کبھی ڈائریکٹلی کبھی انڈائریکٹلی. پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور اب ہم 2019 کے اندر ہم ڈکٹیٹرشپ تو نہیں دیکھ رہے، ہم ملٹری ٹیک اوور تو نہیں دیکھ رہے، لیکن ہم اس کے ریمیننٹس دیکھ رہے ہیں.
کیا سمجھتی ہے آپ کہ جو قدغنیں اب پریس فریڈم پر لگ رہی ہیں، اب جو قدغنیں لگ رہی ہیں وہ ماضی سے کس طرح مختلف ہیں اور اس سے ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہوں گی یا ہو رہی ہیں ان پر مریم نواز کی کیا ٹیک ہے؟
دیکھیں، ماضی میں بھی کبھی یہ کچھ نہیں ہوا. ڈکٹیٹرشپ جب آتی ہے نا، تو جب مارشل لاز لگتے ہیں تو وہ اناؤنس ہوتا ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کہ سب چیزیں سسپینڈیڈ. لیکن یہ پہلی حکومت ہے جس میں ڈیموکریسی کے فساد ہوتے ہوئے بھی بدترین مارشل لا، سویلین مارشل لا، بدترین ہیومن رائٹس کی اور فریڈم آف ایکسپریشن کی اور فریڈم آف جو پریس ہے اس کی. آرٹیکل 19 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 19 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سیز دیٹ ایوری سٹیزن شیل ہیو رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف پریس. یہ جو سب فریڈمز ہیں یہ سسپینڈڈ ہے اس وقت، بلکہ سسپینڈڈ نہیں ہے، ایک ان اناؤنسڈ بین ہے، نہ صرف میرے اوپر بلکہ ہر اپوننٹ کے اوپر، ہر اس صحافی کے اوپر جو سچ لکھنا چاہتا ہے، سچ بولنا چاہتا ہے، سچ کہنا چاہتا ہے.
آپ کے والد کو ہم نے، آپ کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ان کے ساتھ کیا ناانصافی ہوئی ہے؟ ایویڈنسز پرووائڈ اگر کیے جاتے تو آپ کو لگتا ہے ناانصافی کس طرح ہوئی ہے؟
دیکھیے ریم، یہ میں تو نہیں کہہ رہی کہ ناانصافی ہوئی ہے، یہ اب پورا پاکستان کہہ رہا ہے، یہ جج صاحب خود کہہ رہے ہیں جنہوں نے میاں صاحب کو سزا دی تھی. اور وہ نہ صرف یہ کہہ رہے ہیں بلکہ وہ پورا بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو ایک آبسین ویڈیو، ایک آف پرسنل نیچر ان کو دکھا کے کس طرح ان کو بلیک میل کیا گیا ٹو پنشنگ نواز شریف، ان ٹو پنشنگ نواز شریف ود یو نو دس آبسین ویڈیو آف ہز. تو ये तो मैं अब नहीं कह रही, ये तो जज साहब खुद फरमा रहे हैं।
आपने भी बात की जज अरशद मलिक वीडियो लीक कॉन्ट्रोवर्सी की, आप कह रही हैं कि आपके पास और एविडेंसेस हैं। आर यू होल्डिंग बैक?
आई एम नॉट होल्डिंग बैक, आई एम जस्ट एक्टिंग वेरी रिस्पॉन्सिबली और आई कुड बी रेकलेस, लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ इरम, एक बेटी तो हूँ और मेरा दिल करता है कि मैं अपने बाप के लिए जो हो सके करूँ। आई कैन टेक अ बुलेट फॉर हिम, लेकिन मैं साथ साथ एक पाकिस्तानी हूँ और मेरा मकसद जो है वो इदारों के साथ लड़ाई नहीं है। मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। और कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है, अगर वो कहता है कि मुझे लोगों ने ये इज्जत दी है और मुझे लोगों ने ये वोट दिया है और हुकूमत चलाना जो है वो मेरा काम है एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो वो फिर उसको कानून और आईन पे चलने की सजा नहीं मिलनी चाहिए। मेरी तो इतनी सी बात है। और अगर आपने सजा दे दी है और अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, जज खुद कह रहा है कि मुझे ब्लैकमेल किया गया और ये झूठी सजा मुझसे दिलवाई गई और एक पाई की करप्शन मियां साहब के ऊपर साबित नहीं हुई, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि इंसान और क्या करे। और मुझे ये कहा जाता है आप कोर्ट क्यों नहीं जाती, भैया आपने ये जो इल्ज़ाम मियाँ साहब पे लगाए थे ये कोर्ट